उदय के पूछने पर इप्सिता ने कहा, अरे नहीं भाई, हमने कुछ ठंडा नहीं खाया है। हम एक्चुअली पानी में थोड़े भीग गए थे, इस वजह से शायद थोड़ी ठंड लग गई है। उदय ने पूछा, कैसे भीग गई? वहां पर बारिश हो रही थी क्या? इप्सिता ने अपने मन में सोचा, ये उदय भाई भी कितने सवाल करते हैं। अब हम इन्हें ये तो नहीं बता सकते कि हम खुद ही जाकर पानी में कूद गए थे जिसकी वजह से हमें सर्दी हो गई, क्योंकि अगर हमने ये बताया तो भाई और ज्यादा फिक्र करेंगे। इप्सिता ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से उदय की आवाज आई, क्या हुआ ऐशी, आप हमारी बात सुन रही है ना? इप्सिता ने बात संभालते हुए जवाब दिया, हाँ भाई हम सुन रहे हैं, और वो बस थोड़ा सा ही भीगे थे, आप फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। उदय ने भी फिर आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ध्यान रखो और थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, आराम मिलेगा इससे। इप्सिता ने भी उसकी बात सुनकर कहा, जी भाई हम पी लेंगे। वैसे आप बताइए, आपने हमें कॉल क्यों किया था? उदय ने जवाब देते हुए पूछा, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि तुम वापस कब आ रही हो, तुम्हारे सारे एग्जाम तो खत्म ही हो गए हैं, और तुम्हें पता है यहाँ पर मम्मी और पापा शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। इप्सिता ने बताया, हाँ भाई आप फिक्र मत करिए, हम कल ही वापस आ रहे हैं। उदय खुश होते हुए बोला, ठीक है फिर जल्दी आओ, हम दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है, हम तुम्हारा वेट करेंगे। उसने उदय की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई हमने भी आपको बहुत मिस किया है, हम कल आपसे मिलते हैं, और वैसे भी अभी हमें अपनी पैकिंग करनी है। उदय ने कहा, ठीक है तुम आराम से पैकिंग कर लो, हम बाद में तुमसे बात करते हैं। इतना बोलकर उदय ने कॉल कट कर दिया। इप्सिता के सिर में हल्का दर्द हो रहा था, उसे बार बार छींक आ रही थी। उसने अपना बैग निकाला और अलमारी खोलकर उसमें से अपना एक एक सामान अपने सूटकेस में रखते हुए बोली, शायद उदय भाई सही कह रहे हैं, हमें सर्दी हुई है और अगर हम अदरक वाली चाय पियेंगे तो शायद थोड़ा आराम मिले। इप्सिता अपनी पैकिंग कर रही थी, इप्सिता को एक तेज छींक आई। अभिमन्यु जो इप्सिता के कमरे के पास से निकल रहा था, उसने जैसे ही इप्सिता की आवाज सुनी वो इप्सिता के कमरे में आया। उसने देखा इप्सिता अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी। अभिमन्यु उसके पास आकर बोला, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना इप्सिता? अभिमन्यु की आवाज सुनकर इप्सिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, वो आगे बढ़कर उसके पास आया और उसे पैकिंग करते हुए देखकर बोला, ये क्या कर रही हैं आप? इप्सिता ने कहा, आपने ही तो बताया था टिकट बुक कर ली है और हमारी कल की फ्लाइट है ना, तो हम बस अपना सामान पैक कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, आप शांता काकी को बोल देती, वो कर देती ये सब। इप्सिता अभिमन्यु की बात का जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसे तेज छींक आई। उसने अपना हाथ मुंह पर लगाते हुए कहा, सॉरी लेकिन हमने सोचा हमारे थोड़े से ही तो कपड़े हैं, पैक करने में कितनी देर लगेगी, तो इसके लिए क्यों हम शांता काकी को परेशान करें, और वैसे भी वो तो पहले ही इतना काम करती हैं, हमने सोचा कि ये तो हम खुद ही कर लेंगे। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह छींकते देखकर बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, और वैसे भी आपकी तबीयत हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। इप्सिता बेड पर बैठकर अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ शायद पानी में गिरने की वजह से थोड़ी ठंड लग गई है और इस वजह से हमारा सर भी थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन शायद हम रात में सोएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर उसके करीब आया। इप्सिता की नाक एकदम लाल हो गई थी। अभिमन्यु ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने इप्सिता के माथे पर अपना हाथ लगाकर उसके बुखार को चेक करते हुए कहा, इप्सिता आपको तो फीवर भी है। इप्सिता ने अपना गाल छुआ और उसे मना करते हुए कहा, नहीं फीवर नहीं है, हाँ बस हल्की सी बॉडी वार्म है, कभी कभी ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। अभिमन्यु ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, कुछ नॉर्मल नहीं, आपको सच में फीवर है और ऐसे में आप ट्रैवल कैसे कर पाएंगी? इप्सिता उठकर खड़ी हुई और उसने मना करते हुए कहा, अरे नहीं हम ट्रैवल कर लेंगे, इट्स फाइन। इप्सिता ये सब बोली रही थी कि तभी इप्सिता को चक्कर आया और वो गिरने ही वाली थी। अभिमन्यु ने जल्दी से ही इप्सिता की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे संभाल कर बेड पर बिठाते हुए कहा, नहीं आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगी और हम आपको ट्रैवल करने भी नहीं देंगे, इसलिए ये सब पैकिंग करना छोड़िए और अभी बस रेस्ट करिए। अभिमन्यु ने इतना बोलकर इप्सिता को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, आप चुपचाप रेस्ट करिए, हम अभी आपके लिए अदरक वाली चाय और मेडिसिन भिजवाते हैं। इप्सिता अभिमन्यु को मना करने के लिए कुछ बोलने चाह ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्सिता के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, श्श कुछ नहीं कहेंगी, आप बस चुपचाप आंखें बंद करिए और रेस्ट करिए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि उसने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, हेलो हमारी कल की फ्लाइट की टिकट कैंसिल करो। अभिमन्यु किसी से फोन पर बात कर रहा था और इप्सिता ने उसकी ये बात सुन ली। तभी अभिमन्यु ने कहा, हाँ हम तुम्हें बता देंगे कि कैब बुक करनी है, ठीक है? इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु ने हमारी वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी। इप्सिता इतना सोचकर काफी खुश हो गई और उसने अपने मन में कहा, अभिमन्यु चाहे कुछ भी कहें लेकिन उन्हें हमारी फिक्र तो है। इप्सिता इतना सोचकर मुस्कुराई और तभी उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, वो बस शायद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतना बोलकर उसने अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु इप्सिता के लिए फीवर की मेडिसिन लेकर आया। उसने मेडिसिन इप्सिता के आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ये खाइए ताकि आपका फीवर जल्दी उतर जाए। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात मान ली और उसने वो मेडिसिन खा लिया। थोड़ी देर में इप्सिता को नींद आ गई और इप्सिता अपने बेड पर आराम से सो गई। उसे सुलाकर अभिमन्यु भी अपने रूम से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि कहीं वो टाइम पर ना पहुंच पाता और अगर इप्सिता पानी में डूब जाती, उसे ज्यादा कुछ हो जाता तो। ये सब सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था। लाइफ में पहली बार वो किसी और को लेकर इतना परेशान था। शाम को इप्सिता की आंख खुली और वो अब पहले से काफी बेहतर फील कर रही थी। उसने उठकर देखा, उसके दोनों बैग्स पैक होकर वहीं अलमारी के पास रखे हुए थे। उसका रूम पूरी तरह से क्लीन था। वो उठकर बैठी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी देर तक सोते रहे हम? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि अभी अभी अभिमन्यु उसके रूम में आया और उसे उठा हुआ देखकर बोला, जाग गई आप? अब आपका फीवर ठीक है ना? इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इप्सिता के माथे पर रखकर उसके शरीर का तापमान चेक करने लगा। इप्सिता अभिमन्यु को ऐसा करते देखकर धीमी आवाज में बोली, हम ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अभिमन्यु इप्सिता के साथ बैठा था। अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा और उसने तुरंत अपना फोन जेब से निकाला। उसने देखा उसमें मासा की वीडियो कॉल आ रही थी। अभिमन्यु ने कॉल पिकअप कर ली और उसने मासा से बात करते हुए कहा, हेलो मासा, कैसी हैं आप? मासा ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, अभिमन्यु आज आपकी फ्लाइट थी, आप अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं है? अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था ना, आपने फ्लाइट क्यों कैंसिल की? क्या आप हमें इसका रीजन बताएंगे? इप्सिता ने मासा की डांट सुनकर अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसकी वजह से ही अभिमन्यु को डांट सुननी पड़ रही थी।
अभिमन्यु ने बहुत ही सहजता से जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मासा, वो इप्सिता की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें फीवर आ गया था, इसलिए हमने सोचा एक दिन अगर और रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी आप परेशान मत होइए, अब इप्सिता की तबीयत ठीक है और हम दोनों कल की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। मासा ने इप्सिता की बात सुनी और वो बड़े ही धीमी आवाज में बोली, ठीक है, इप्सिता का ध्यान रखिएगा और हमारी बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए अभिमन्यु। अब हम शादी की डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक हफ्ते बाद आपकी और इप्सिता की शादी होकर रहेगी। सुना, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए अब आप लोग अपना और समय बर्बाद ना करिए और जितनी जल्दी हो सके उदयपुर वापस आ जाइए। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है मासा, हम आपकी बात समझ गए। इप्सिता मासा की सारी बातें सुनकर अपने मन में बोली, हमें शायद अभिमन्यु की बात नहीं माननी चाहिए थी, हमें एक दिन और यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, हमारी वजह से अभिमन्यु को इतना कुछ सुनना पड़ गया। इप्सिता ये सब सोच रही थी कि तभी अभिमन्यु ने फोन वापस अपनी जेब में रख दिया। वो इप्सिता से इससे पहले कि कुछ बोल पाता, इप्सिता ने बड़ी गिल्ट फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आपको हमारी वजह से मासा से डांट सुनाई पड़ी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करते हुए कहा, आपको हमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमने कल की टिकट बुक कर ली है, हम कल वापस घर चलेंगे। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे लीजिए, फिर हम डिनर करते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे पहुंची तो उसने देखा अभिमन्यु पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। इप्सिता उसके पास जा ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होने लगा। जैसे ही कमरे के अंदर से उसके फोन के रिंग होने की आवाज आई, इप्सिता अपने वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। उसने जैसे ही मोबाइल फोन उठाकर स्क्रीन पर नाम देखा, उसने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा, नंदिनी हमें इस टाइम कॉल क्यों कर रही है? इप्सिता वापस कमरे की तरफ मुड़ी और उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, क्या हुआ नंदिनी, तुम हमें इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो? नंदिनी ने बड़े ही ड्रामा भरी आवाज में कहा, इशू, मैं ना तुझसे बहुत नाराज हूं, तेरी आज की फ्लाइट थी, तू वहां पहुंची भी नहीं और तूने मुझे बताया भी नहीं। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर बोली, अरे कैसी बात कर रही है यार तू, मेरी आज फ्लाइट थी लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे हल्का फीवर था और अभिमन्यु ने फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, क्या हो गया तुझे, तुझे फीवर कैसे आ गया? इप्सिता ने कहा, अरे वो बस थोड़ा सा पानी में भीग गई थी इस वजह से। अरे तो परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इप्सिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने पूछा, अच्छा तो फिर बता तू कब चल रही है? तुझे पता है मैंने सोचा था कि मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी, क्योंकि अब तेरी शादी में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो फिर मैं सोच रही थी अगर तेरे साथ ही चलूंगी तो ठीक रहेगा, और वैसे भी मैंने सारी पैकिंग तो कर ही ली है। बता मुझे कब की है तेरी फ्लाइट? मैं भी अपनी फ्लाइट उसी दिन की बुक कर लेती हूँ। क्रमशः